जिस बियर बाइसेप्स को आप आज स्पिरिचुअल कंटेंट बनाते हुए देखते हो, धार्मिक कंटेंट बनाते हुए देखते हो, ये बियर बाइसेप्स बचपन में नास्तिक था, एथियस्ट था। मुझे एथियज्म का मतलब भी नहीं पता था, पर कूल बनने के लिए ये मैं कहता था कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। क्यों? कूल बनने के लिए, क्योंकि मेरे आसपास के लोग कहते थे कि वो एथियस्ट है, इसलिए मुझे लगा हाँ मैं भी एथियस्ट हूँ। मेरी मम्मी ने नोटिस किया और नोटिस करने के बाद मुझे कहा कि यार देख, तू अभी बच्चा है, बट जब तू अडल्ट बन जाएगा लाइफ में मुश्किलें आएंगी, और उन मुश्किलों का सामना करने के लिए जैसे बैटमैन के पास एक रॉबिन होता है ना, आप बैटमैन हो और आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, रॉबिन होना चाहिए। वो रॉबिन हर इंसान की लाइफ में होता है भगवान। तो तब मैं समझा कि यार हाँ, प्रेयर करना चाहिए। डर की वजह से उस रॉबिन को चेज करने के लिए मैंने प्रेयर स्टार्ट किया। हर रात सोने से पहले मैं भगवान को प्रे करता था कि भगवान जी मेरा बस ख्याल रख लो, और जो भी छोटे मोटे बचपन के विशेस थे उन चीज़ों के लिए मैं विश करता था, पूछता था कि ये दिलवा दो या मुझे ये स्ट्रेंथ दे दो। मेरी मम्मी ने एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, उस पर भी शायद एक दिन सोलो पॉडकास्ट बनाएंगे। पर मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में शनि का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। शनि क्या होता है? लोगों को लगता है कि शनि मतलब बैड लक होता है, शनि मतलब सैटर्न, मतलब अभी आपकी लाइफ बर्बाद हो गई है। अगर आप असलियत में शनि को एक धार्मिक पर्सपेक्टिव से स्टडी करोगे, योगिक पर्सपेक्टिव से स्टडी करोगे, आपको यह पता चलेगा कि शनि बैड लक नहीं होता है, शनि एक परीक्षा की तरह होता है, आपकी लाइफ की एक परीक्षा। तो अगर किसी ने आपसे ये कहा कि 2 सालों के लिए आपकी लाइफ में शनि का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, शनि का बहुत ज़्यादा असर है, उसका ये मतलब नहीं कि आपके 2 साल बुरे होने वाले हैं। इसका ये मतलब है कि आपको टेस्ट दिए जाएंगे, आपकी परीक्षा ली जाएगी, और शनि को ओवरकम करने के बाद, उसको झेलने के बाद, चलो झेलना थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, पर शनि के साथ चलने के बाद, जब शनि का आपके साथ सफ़र ख़त्म हो जाएगा, तब आपकी लाइफ में एक बड़ी गिफ्ट दी जाती है, एक तोहफा दिया जाता है। मेरे खुद के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की बात करूं तो मेरी लाइफ में कहा जाता था कि अराउंड 20 इयर्स की उम्र तक, 20-22 उम्र तक शनि का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, और उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी। और सच में अगर मैं खुद की लाइफ को स्कैन करूं तो एज 22 तक मैंने फेलियर का सामना किया, बहुत सारे ब्रेकअप्स का सामना किया, एडिक्शंस का सामना किया, उन सारी चीज़ों की बातें हो चुकी है इस पॉडकास्ट पे। एज 22 के बाद बियर बाइसेप्स की शुरुआत हुई, और अभी अगर मैं इन पिछले 6 सालों को स्कैन करूँ ना, तो मैं खुद चौंक जाता हूँ कि यार इतना सारा लक मेरे लाइफ में कैसे आ गया, इतनी सारी खुशी, इतने सारे तोहफे कैसे आ गए। और फिर मैं याद करता हूँ मेरे बचपन को, जहाँ अगर मैं पागलों जैसी मेहनत भी करता, मुझे मार्क्स कम ही आते, अगर मैं पागलों जैसा प्रिपेयर करता किसी कंपटीशन के लिए, तो मैं वहाँ जीतता नहीं, वहाँ कॉन्सोलेशन प्राइज़ जीतता, 3rd प्लेस जीतता। जितनी मेहनत करता था उतना फल मुझे कभी नहीं मिला, एंड मेरे अकॉर्डिंग यही था मेरा शनि, कि मुझे टेस्ट किया जा रहा था। पर योगिक पर्सपेक्टिव से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जितनी मेहनत आप करोगे ना लाइफ में, वो सारी की सारी मेहनत रजिस्टर होती है यूनिवर्स में, भगवान रजिस्टर करते हैं। तो अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो मेहनत वेस्ट हो गई, उसका ये मतलब है कि वो मेहनत का फल आपको बाद में दिखाई देगा। और ये मैंने रिपीटेडली देखा अपनी लाइफ में, किसी वीडियो पर बहुत मेहनत की है, बिल्कुल व्यूज़ नहीं मिले, तो बाद में कोई वीडियो को हमने 30 सेकेंड 1 मिनट में बना दिया और उससे 10 गुना ज़्यादा व्यू मिले एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग वी एक्सपेक्टेड, एज कम्पेयर टू एनीथिंग वी हैड डन। ये होता है लाइफ का सच, योर हार्डवर्क इज़ रजिस्टर्ड बाय द यूनिवर्स। पर ये वीडियो है एक लाइफ के दूसरे सच के बारे में, मेरे लाइफ के दूसरे सच के बारे में। हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य श्लोक जो अवधी भाषा में लिखा गया, अवध की भाषा में, संस्कृत में नहीं। अक्सर श्लोक संस्कृत में लिखे जाते हैं, संस्कृत में पावर होता है। क्यों? क्योंकि हर शब्द के पीछे होती है एक फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर आपने ओम कहा, आपका वोकल कॉर्ड एक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होता है, कहा जाता है कि वो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है, और लोग कहते हैं कि हाँ इससे पॉजिटिव वाइब फील हो रही होती है। हमारे आसपास दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स फैले हुए हैं। जिन चीज़ों के बारे में हमने बात करी, जैसे अगर हमने खुशी, पॉजिटिविटी, हेल्प, चैरिटी, काइंडनेस, एक साफ दिल से रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं, जो जज्बात होते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करी, उन शब्दों का इस्तेमाल किया, प्यारे से शब्दों का इस्तेमाल किया, तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव वाइब आ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूटन की थर्ड लॉ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो पॉजिटिविटी आप दुनिया में डाल दोगे, वहीं पॉजिटिविटी लौट कर आपके पास आ जाएगी। अगर आप लोगों को गालियाँ दोगे, लोगों को नीचे खींचने की कोशिश करोगे, लोगों की लाइफ ज़्यादा मुश्किल कर दोगे, आपकी लाइफ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो फिज़िक्स में भी अप्लाई होती है, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, और इस लॉ को हम कहते हैं कर्मा। कर्मा आपके कर्म से रिलेटेड तो है ही, पर आपके सोच विचार और आपके शब्दों से रिलेटेड भी है। अवधि भाषा के फ्रीक्वेंसी के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर मंत्र और श्लोक्स के साइंस को स्टडी करने के बाद, जो हमारे एंशिएंट किताबों में लिखा गया है, जो हमारे संस्कृति की किताबों में लिखा गया है, ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, गीता में क्या लिखा गया है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है कि मंत्र और श्लोक में पावर होता है, और ये मैंने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया। देखो, मैं साइंस का बहुत सम्मान करता हूँ, साइंस के सामने माथा टेकता हूँ, पर मैं ये भी मानता हूँ कि साइंस को भी और बहुत कुछ डिस्कवर करना है। हाल ही में साइंस ने प्राणायाम का पावर डिस्कवर किया, मेडिटेशन का पावर डिस्कवर करने लगा है साइंस, पर जिन शब्दों का इस्तेमाल यूज़ करते हैं, उन शब्दों का असर आपके ब्रेन पर भी होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर भी होता है, आपके लाइफ और आपके एक्सपीरियंसेस पर भी होता है। अगर आप हमेशा यही कहते रहे कि यार मेरी लाइफ इतनी मुश्किल है, मेरी लाइफ इतनी मुश्किल है, मेरी लाइफ इतनी मुश्किल है, आपकी लाइफ मुश्किल होते जाएगी, अगर आपने हमेशा ये कहा कि यार ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सच में सब अच्छा हो जाएगा। आप अपने दिल को उल्लू बना रहे हो, और उसके साथ साथ शायद जो हमारे आसपास की माया है उसे भी उल्लू बनाकर माया को अपने फ़ायदे के लिए काम करवा रहे हो। अच्छा काम करो, मेहनत करो, और अगर हो सके तो आपने पूजा करी, आपने मेडिटेशन करी, आपने स्पिरिचुअलिटी फॉलो करी, आपके लाइफ में इन चीज़ों का जो असर होगा, यू वॉन्ट बिलीव इट, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन सारे चीज़ों का। शायद ये सिर्फ आप साइकोलॉजिकली खुद को उल्लू बना रहे हो, बट मेरे एक्सपीरियंस से हनुमान चालीसा जैसे एक दिव्य श्लोक की एंट्री के बाद बहुत कुछ होने लगा। अगर आप वो स्टोरी को स्कैन करोगे, हनुमान जी की स्टोरी को स्कैन करोगे इन रिस्पेक्ट टू शनि, कहा जाता है कि शनि देव लोगों को सताते थे, लोगों को चिढ़ाते थे, काफ़ी सारे देवों को शनि देवता ने सताया, और उन देवों ने हनुमान जी के पास जाकर ये कहा कि यार आप ही कुछ कर लो, आप महान हो, आप हनुमान जी हो, आप ही इनको हैंडल कर पाओगे। तो हनुमान जी वहाँ गए, और फिर शनि देवता ने कहा कि ठीक है, मैं अभी तेरे पीठ पर देखो कस कर पकड़ के वहीं रहूँगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर आपको वो करना है कर लो। तो शनि देवता ने उन पर जंप मारी, उनके पीठ पर ऐसे चिपक गए। हनुमान जी शनि देवता से मिले थे एक बंद कमरे में, मेरे ख्याल से वो एक मंदिर था, और हनुमान जी के दिव्य शक्तियों के बारे में हम सभी को पता है कि वो साइज चेंज कर सकते थे। तो उन्होंने अपनी साइज इतनी बड़ी कर दी कि शनि देवता वहां दब गए उनके बॉडी और दीवारों के बीच। और फिर शनि देवता ने कहा हे हनुमान प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं तुझे सिर्फ तब छोड़ूंगा जब तू लोगों को सताना बंद करेगा। तो शनि देव ने कहा कि मैं लोगों को सताता नहीं, उन्हें परीक्षा देता हूं, एस देता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, पर अगर किसी ने भी मेरा नाम लिया, मेरे श्लोक पढ़े, तो फिर जिनकी भी लाइफ में तू एस डाल रहा है, तू परीक्षा डाल रहा है, उस परीक्षा का सामना करने के लिए जो शक्ति चाहिए रहती है, जो आत्मविश्वास चाहिए रहता है, वो उस इंसान को मिल जाएगा, उनके लिए वो परीक्षा आसान हो जाएगी। पता है बचपन में कभी कभी हम सबकी लाइफ में ही हुआ है, पर कभी कभी एक ऐसा एग्जाम आता है, स्कूल के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ आपने उस एग्जाम को बहुत झट से सॉल्व कर दिया। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आप अपने दोस्तों से बात करते हो, और फिर आपको पता चलता है कि ये पेपर आपके दोस्तों के लिए बहुत मुश्किल था, उन्हें लगा कि बहुत मुश्किल पेपर था, और आपको लगता है कि यार पर ये तो बहुत आसान था, मुझे तो सारे चीज़ें आती थी, क्योंकि शायद पढ़ाई करने के टाइम आपने सही चीज़ें पढ़ी, लक की वजह से आपने कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ी जिसे पढ़कर आपको लगा हाँ ये पढ़ लेता हूँ, शायद आ जाएगा तो क्या होगा, पर उन बाकी लोगों ने उन चीज़ों को नहीं पढ़ा अच्छे से, और वही सरप्राइज क्वेश्चंस आ गए पेपर में और आपको उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आता था। ये होता है हनुमान चालीसा का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में। चाहे आपकी लाइफ में शनि हो या ना हो, आपकी लाइफ में लक, होप, पॉजिटिविटी डेफिनेटली आ जाती है। अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ोगे तो उस श्लोक का हर पैराग्राफ हनुमान जी की एक स्टोरी होती है। इसका लॉजिक क्या है? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी अवधी भाषा में, संस्कृत में नहीं लिखी है, पर हनुमान चालीसा में बहुत ज्यादा जज्बात भरे हुए हैं। अगर आप हनुमान चालीसा समझ कर पढ़ोगे तो फिर उसका इफेक्ट और भी ज्यादा हो जाता है। ये विचार एक साइड पर रख दीजिए, अभी मैं मेडिटेशन के बारे में थोड़ी बात करूंगा। बिगिनर्स मेडिटेशन के बारे में मैंने बहुत बात करी है कि आपको बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए और फिर आपको मेडिटेशन के इफेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है? आपको एक हैबिट बनानी है पहले, फिर आपको मेडिटेशन के वो कामिंग, ब्रेन प्रोसेसिंग पावर इंप्रूवमेंट वाले इफेक्ट्स दिखेंगे। कोई भी एडवांस मेडिटेटर जो एडवांस मेडिटेशन कोर्सेज करता है, जो मेडिटेशन के साथ साथ एडवांस्ड योगा करता है, उन्हें कहा जाता है कि अगर आपको सच में मेडिटेशन की दिव्य शक्ति देखनी है अपनी लाइफ में, तो फिर आपको मेडिटेट करना चाहिए जज्बातों के साथ, इमोशंस के साथ। जितनी ज़्यादा आपने इमोशंस अपने प्रेयर में डाल दी, जब आप भगवान से कोई चीज़ मांग रहे हो ना, अगर आप दिल से मांग रहे हो वो चीज़, तो भगवान आपकी दुआओं को पूरा करेगा। और ये होती है एक लाइफ हैक, जब आप प्रे कर रहे होते हो दिल से चीज़ें मांगो, भगवान से प्यार करो, होप करो कि हाँ अभी मैंने तुझसे ये चीज़ मांगी है, जब समय राइट होगा ना तू ये मुझे चीज़ दे देगा। ये होता है मेडिटेशन करने का सही तरीका। जज्बातों के साथ पूजा करो, जज्बातों के साथ भगवान से चीज़ों के लिए पूछो। जो विचार आपने साइड में रखा है ना हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा का हर पैराग्राफ एक स्टोरी के बारे में। स्टोरी क्या होती है? मैंने अभी आपको एक स्टोरी बोली एग्जाम के बारे में, उसके पहले आपको स्टोरी बोली मेरे बचपन के बारे में। हमारा दिमाग पता कैसे बनाया गया है? अगर आपने युवाल नोआ हरारी की सेपियंस बुक पढ़ी तो आपको ये कोट याद आएगी, ह्यूमन बींग्स हैव फोर नीड्स। मनुष्य के चार नीड्स होते हैं, चार ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सभी को पता। चौथी ज़रूरत, चौथी नीड होती है स्टोरी टेलिंग। एवरी ह्यूमन नीड्स फूड, शेल्टर, क्लोदिंग एंड स्टोरी टेलिंग। कहानियाँ हमारी लाइफ के एसेंस होते हैं। हमारा दिमाग ऐसा बनाया गया है। अगर किसी बोरिंग से यूट्यूबर ने आकर आपको नंबर के थ्रू साइंस के बारे में समझाया, आपको मज़ा नहीं आएगा। पर अगर क्रिस्टोफर नोलन ने एक मूवी बना दी स्पेस के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में, या ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में, वो स्टोरी आपको याद रहती है। कभी ये सोचा कि ये इफ़ेक्ट क्यों होता है आपकी लाइफ में, आपके दिमाग पर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी बुक ऋग्वेद 10,000 साल पहले लिखी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्टोरियन अभिजीत चावड़ा कह रहे हैं और दुनिया भर के हिस्टोरियंस आजकल कहने लगे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी बुक ऋग्वेद है और उसका प्रूफ ये है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बारे में लिखा गया, और सरस्वती नदी कुछ 8,000 पहले ड्राई हो चुकी थी। मतलब उसके पहले, शायद 10,000 साल पहले के आसपास ऋग्वेद लिखा गया था। तो ऋग्वेद इस दुनिया की सबसे पुरानी किताब है और वो सिर्फ 10,000 साल पुरानी है। अगर आप होमो सेपियंस की स्टडी करें, अगर आप युवाल नोआ हरारी की सेपियंस किताब पढ़ें, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर हैं, जो सबसे पुराने होमो सेपियन हैं, हमारे स्पीशीज के सबसे पुराने इंसान कब जन्मे थे? 3 लाख साल पहले। 3 लाख साल पहले मतलब 2,90,000 सालों तक हमने ना ही कुछ लिखा और शायद ना ही कुछ पढ़ा। और अगर कुछ लिखा हुआ होगा या पढ़ा हुआ होगा, उसका प्रूफ आज तक नहीं मिला है। 2 लाख 90,000 सालों तक हमारा ह्यूमन ब्रेन, इंसान का दिमाग, ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, मतलब किसी ने आपसे स्टोरी बोली, किसी ने आपको कोई चीज़ कही, उस प्रोसेस से सीखता था। हमारे दिमाग को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। ये होती है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, मतलब जैसे जैसे हमारा दिमाग इवॉल्व हो रहा था, वैसे ही हमारे बिहेवियर्स, वैसे ही हमारे सोच विचार बदल रहे थे। हमारा दिमाग स्टोरीज़ को बहुत आसानी से समझता और उन स्टोरीज़ के जज्बातों को बहुत आसानी से कैप्चर करता। हमें जज्बात कैसे अच्छे से समझते, एक स्टोरी की सबसे प्यारी बात यह है कि आप किसी और की लाइफ आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हो एक स्टोरी के थ्रू। तो जब हनुमान जी के बारे में इतनी स्टोरीज लिखी गई हैं, चाहे भाषा कोई भी हो, आपको हनुमान जी के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे थे, वो कैसे सोचते थे, उनके दिल में क्या था, क्या करना चाहते थे, वो किन चीज़ों के देवता माने जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है स्टोरीज़ के थ्रू। और इसलिए भाषा का कोई मतलब नहीं है। कल अगर जापानीज़ भाषा में भी हनुमान चालीसा लिखी गई होती, पर आप दिल से जापानीज़ वाली हनुमान चालीसा बोलते, तो आपको वही पावर मिलता हनुमान चालीसा से। बचपन में मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, आपकी लाइफ में शनि का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, आपको हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। एक साल तक लगातार हर दिन स्कूल से पहले हनुमान चालीसा की बुक खोलकर पढ़ता था। पहले इंग्लिश में पढ़ता था, फिर हिंदी में पढ़ता था, और फिर इंग्लिश और हिंदी के राइटअप्स के बाद एक छोटा सा राइटअप होता था इंग्लिश में, एक पैराग्राफ समझाने के लिए कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। जैसे जैसे मैंने लाइफ में योगा सीखी, मेडिटेशन सीखी, मुझे ये पता चला कि एक मेडिटेटर के लिए शांति से मंत्र कहना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? जज्बातों की वजह से। मेडिटेशन करने का, प्रेयर करने का असली तरीका होता है, जज्बातों के साथ मेडिटेशन कीजिए, जज्बातों के साथ प्रे कीजिए। अगर आप भगवान से मदद मांग रहे हो, दिल से मदद मांगो। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा चीज़ें सीखते जाओगे, आपके लाइफ के बाकी के एक्सपीरियंसेस भी और बेहतर होते जाएंगे। मेडिटेशन की बात की जाए तो मैंने एक और चीज़ सीखी हमारे हिंदू धर्म के देवताओं के बारे में। कहा जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचार्य के देवता थे, ताकत के देवता थे, इंद्र भगवान बारिश के देवता हैं, शिव जी के कोई ट्रेट्स हैं, विष्णु भगवान के कोई ट्रेट्स हैं, दुर्गा माता, सरस्वती, लक्ष्मी माता के कोई ट्रेट्स होते हैं। अगर किसी ने इन देवताओं के मंत्र पढ़े, तो कहा जाता है कि इन देवताओं के जो शक्ति थे, जिन चीज़ों के लिए वो जाने जाते थे, वही ट्रेट्स आपके दिल में बस जाएंगे और आपके दिमाग से वो चीज़ें अप्लाई होने लगेंगी आपकी लाइफ में। पर इसका कोर सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर होता है, पहले आपके जज्बात और दूसरी चीज़ ये कहानियाँ जो ओरल ट्रेडिशन से पास डाउन किए जाते हैं। जब हमें रामायण और महाभारत के बारे में बताया जाता है, हमें ये कहा जाता है कि अर्जुन की तरह बनो, भीम की तरह बनो, राम जी की तरह बनो, हनुमान जी की तरह बनो, क्योंकि हर बच्चे को इन कहानियों के बारे में पता, हर बच्चा कहानियाँ समझता है। कहानियाँ आप बचपन में भी समझते हो, अडल्ट बनने के बाद भी समझते हो, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, जितनी भी ये हिस्टोरिकल कहानियाँ आप सुनते हो, हमारे हिंदू धर्म की कहानियाँ सुनते हो, इनके पीछे जो मीनिंग है, इनके पीछे जो इमोशंस है, जो जज्बात है, जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है, जो गुड एनर्जी है, उन चीज़ों को सीखो, उन चीज़ों को अप्लाई करो। अगर आप हनुमान चालीसा ऐसे ही पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, बिना हनुमान जी के बारे में सोचे हुए, बिना उनके ट्रेट्स के बारे में, बिना उनके कैरेक्टर के बारे में सोचे हुए, तो उसका बहुत कम फ़ायदा होता है। उसका भी फ़ायदा हो डेफिनेटली होता है, क्योंकि उन शब्दों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पर अगर आपको उन शब्दों की फ्रीक्वेंसी से सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी निकालनी है, तो फिर उनका मतलब समझो, उनकी इमोशन समझो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जिस तरह से शनि आपकी लाइफ में टेस्ट है, आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक इंसान मुश्किलों का सामना कैसे करता है, वो होता है उस इंसान की पहचान। जब हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, हम तीन फेजेस के बारे में बात करते हैं मेनली। उनके 70s का फेज़ जब वो टॉप हीरो थे, उनके KBC का फेज़ जब उनकी सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, और तीसरा फेज़ जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जब वो बैंकरप्ट हो गए, जब उन्होंने बिजनेस में गलतियाँ की। अमिताभ बच्चन जी उस फेज़ से निकल कर आए और उस फेज़ के बाद अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग स्टार्ट करी। अगर उन्होंने मुश्किलें नहीं देखी होती तो शायद ही उनके सेकंड फेज़ में उतनी मेहनत करते, इतनी ज़्यादा उम्र में इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों हुई है? उनके वो इनिंग्स ब्रेक की वजह से, जब उन्होंने मुश्किलों का सामना किया। अमिताभ बच्चन भी भगवान को बहुत मानते हैं। जितने भी हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं, स्पेशली इंडिया में, लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी में, शाहरुख खान की बात की जाए, अमिताभ बच्चन की बात की जाए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, ये सारे लोग चाहे हनुमान को माने, अल्लाह को माने, जीसस क्राइस्ट को माने, पर डेफिनेटली भगवान को मानते हैं। और जब भगवान से बातें करते हैं, जज्बातों के साथ बातें करते हैं। जब उनकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ होती है, ऊपर देख के ये कहते हैं थैंक यू गॉड। और जब लाइफ उनके और मुश्किलें फेंकती है, तो फिर अपने रॉबिन के पास जाकर ये कहते हैं कि भगवान मेरी मदद कर ले। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की एक बहुत ही बढ़िया लाइन है, इफ यू डोंट वेलकम गॉड इन योर लाइफ इन द समर्स ऑफ योर लाइफ, बी श्योर दैट ही मे नॉट बी देयर व्हेन द विंटर्स कम टू योर लाइफ। अगर आप भगवान को गर्मियों में अपने घर में नहीं वेलकम करोगे, तो फिर सर्दियों में वो आपके घर नहीं आएंगे। खुशी में भगवान को याद कीजिए और वो डेफिनेटली आपके मुश्किल मोमेंट्स में आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। ये है हनुमान चालीसा की असली मीनिंग अकॉर्डिंग टू मी। शायद आपकी कोई अलग मीनिंग होगी एंड दैट्स ओके। जितना मैंने स्पिरिचुअलिटी से सीखा, जितना मैंने हनुमान जी के बारे में पढ़ने से सीखा, जितना मैंने डेली हनुमान चालीसा से सीखा, वो चीज़ों को मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। जय बजरंगबली, आई होप यू एंजॉयड।